کچھ نظروں سے ایسا نظارہ دکھا دو، تم آ کر ہمیں پریم کرنا سکھا دو، بن جاؤ میرے یا پھر اپنا بنا لو، چلو آج ایسا کرشمہ دکھا دو، گوارا نہیں مجھ کو تم سے کنارہ، تم ملنے کا کوئی بہانہ بتا دو، نگاہوں میں تم ہو خیالوں میں تم ہو، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، میرے دل کو جو تم نے کچھ کر دیا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، راہ پر زندگی کی چلا جا رہا تھا میں، بت بن کے آگے بڑھا جا رہا تھا میں، کیا تھا مجھے تم نے کیا کر دیا ہے، تھا پتھر مجھے دیوتا کر دیا ہے، تھا سمندر میں لیکن تڑپ پیاس کی تھی، تھا سمندر میں لیکن تڑپ پیاس کی تھی، تیری آنکھوں میں اب ڈوبنا آ گیا ہے، مجھے کندھوں پر اب ٹھکانہ ملا ہے کہ اب مر کے جینا مجھے آ گیا ہے، میں دنیا کی ہر چیز ٹھکرا چکی ہوں، میں دنیا کی ہر چیز ٹھکرا چکی ہوں، میں من میں بابا کو پا ہی چکی ہوں، میں چلنا بھی چاہوں تو چلتے نہیں ہیں، کسی دوسری اور اب میرے پاؤں، میں بابا کو بھولوں یہ دھوکھا نہ کھانا، مجھے چھوڑ دے چاہے سارا زمانہ،
بنگال کے مہان دارشنک وچارک اور سماج سیوک کیشو چندر سین بہت بڑے گیانی شاستروں کو جاننے والے تھے، اور جب انہوں نے کبھی سنا کہ کلکتہ کے باہر ایک ایسا ان پڑھ گوار پجاری ہے جہاں پر جس کے پاس بڑے بڑے ودوان جانے لگے ہیں، کیشو چندر برہمو سماج میں تھے، साकार ईश्वर का रूप हो सकता है, इसे मानते नहीं थे। उन्हीं की प्रेरणा से दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, जो कि आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ है। जब केशव चंद्र ये सुनते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसके पास जरा भी तर्क नहीं है और वो इतना प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं और उस व्यक्ति का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। मिलने कहो या तर्क करने कहो, हराने के लिए, क्योंकि केशव चंद्र बहुत बड़े तार्किक थे, बहुतों को हराया था अपनी तर्क बुद्धि से। विदेश भी जाकर आए थे, क्रिश्चियन धर्म का उन पर बहुत प्रभाव था। खबर भिजवाते हैं रामकृष्ण को कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहना। रामकृष्ण के भक्त को बहुत चिंता होती है, अब क्या होगा, सबके सामने हार होगी, क्योंकि केशव चंद्र के साथ तो कोई जीत ही नहीं सकता और ये क्या जीतेंगे, इनके पास तो तर्क ही नहीं है। तो जब आने का दिन होता है तो रामकृष्ण बहुत बेचैन है, बार बार जाकर देखते हैं कि केशव चंद्र अब तक क्यों नहीं आए, अब तक क्यों नहीं आए। भक्त कहते हैं शांत बैठिए, क्योंकि जो होने वाला है बहुत भयंकर होगा। और केशव चंद्र के बहुत सारे अनुयायी भी आ जाते हैं, दक्षिणेश्वर के बहुत सारे लोग, जो कि अब तक कुछ प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है रामकृष्ण को, उनके भी थोड़े बहुत जो भगत थे गांव के, पर सभी के मन में चिंता है क्या होगा क्या होगा। केशव चंद्र आते हैं, आए बराबर रामकृष्ण गले लगते हैं, आओ आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो कहता है इस प्रेम की बातों से मुझे बहलाना मत, मैं यहाँ तर्क करने आया हूँ, तुम्हारा शास्त्र जो है, तुम्हारी जो भी फिलॉसफी है उसका खंडन करने आया हूँ। तुम ये सब क्या करते रहते हो, ये सब असत्य है जो तुम्हारे सिद्धांत है। वो दोनों बैठते हैं, तर्क चालू होता है, वाद विवाद चालू होता है। रामकृष्ण कहते हैं मेरे पास तुम्हारा कोई तर्क ही नहीं है तुम्हें देने के लिए। केशव चंद्र अपनी अपनी बातें करने लगते हैं, ईश्वर है ही नहीं, धर्म के विरोध में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जिसको तुम ईश्वर मानते हो, ये मूर्ति, ये पूजा, ये सब व्यर्थ है। अब रामकृष्ण के लिए इंतजार करते आपको क्या कहना है इस बारे में। रामकृष्ण खुश होते हैं, खड़े हो जाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं, वाह वाह वाह। केशव चंद्र फिर अपने तर्क देते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारे मन की विक्षिप्तता है जो तुमको ये सब दिखाई देता है, ये जो देवी से बात करते हो ये सब भ्रम है तुम्हारा। कि रामकृष्ण फिर खड़े होते, वाह 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 बहुत अच्छा, फिर गले मिलते, क्या तर्क है। वो कहता है कि तुम्हें इन तर्क का खंडन करना है। रामकृष्ण कहते हैं मेरे पास तर्क है ही नहीं, मैं क्या खंडन करूं। फिर ऐसी कुछ तो बातें करते हैं, वाद विवाद चालू है। वो कहता है कि तुम धन्यवाद क्यों दे रहे हो। रामकृष्ण कहते हैं मैं तो उसको धन्यवाद दे रहा हूं कि उसके राज्य में ऐसी प्रतिभा मैंने आज तक नहीं देखी। और कितना आश्चर्य है कि ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति आज तक उससे दूर है। फिर रामकृष्ण खड़े होते हैं, फिर धन्यवाद दे रहे हैं। केशव चंद्र के पास तर्क है, रामकृष्ण के पास अनुभव, और अनुभव को कोई भी तर्क हिला नहीं सकता। बार बार तर्क दिए जा रहे हैं, पर जिसने ईश्वर का अनुभव कर लिया है, जिसने ईश्वर की प्रतीति कर ली है, जिसे प्रभु प्रेम का अनुभव हो रहा है, हो गया हो, उसके सामने संसार का कोई तर्क, संसार की कोई बात बाधा नहीं है। रामकृष्ण कहते हैं, मेरा तो उस पर विश्वास और ही अटल हो रहा है तुम्हारी अवस्था देखकर, कि ऐसा तर्क, ऐसी प्रतिभा, ऐसा बुद्धि का निखार मैंने आज तक नहीं देखा। केशव चंद्र कहते, मैं तुम्हें नास्तिक बनाने आया हूं। आज तक केशव चंद्र को कोई हरा नहीं सका। उस दिन केशव चंद्र ने अपनी डायरी में रात में लिखा कि आज मेरा सामना ऐसे व्यक्ति से हुआ जो अनपढ़ है, जो गवार है, जो बेपढ़ा लिखा है, पर पता नहीं उसके व्यक्तित्व में क्या है ऐसा कि कुछ न होते हुए भी आज मैं उसके सामने हार गया। अनुभव सबसे बड़ी सत्ता है, उसके सामने सारे तर्क पराजित हो जाते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्या भी कहे, जब अनुभव हो जाता है तब आत्मा किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाती है चेतना के, जहां पर उसे संसार की कोई भी बात प्रभावित नहीं करती, संसार का कोई भी विरोध उसे छूता नहीं। केशव चंद्र के पास तर्क था, रामकृष्ण के पास प्रेम। ये जीत थी प्रेम की तर्क पर। रामकृष्ण के पास अनुभव था, केशव चंद्र के पास किताबी बौद्धिक ज्ञान। ये जीत थी अनुभव की ज्ञान के ऊपर। अनुभव, बाबा ने आज क्या कहा, क्या कराओ आत्माओं को? अनुभव, क्योंकि संसार में जो प्यार है वो कैसा प्यार है? स्वार्थी प्यार है। उपराम हो गई है दिल संसार की आत्माओं की, प्यासी है वो सच्चे प्रेम के लिए, उन्हें प्रेम चाहिए। केशव चंद्र ने लिखा कि मैं आज ठाकुर के प्रेम के आगे नतमस्तक हो चुका हूं। प्रेम जीत गया, और इसी की तो संसार में कमी है, और इसी की तो प्यास है, और इसी की तो भूख है। संसार में सब कुछ है, सबके पास धन संपदा, संबंध, साधन, सुख सुविधाएं, परंतु प्रेम द मिसिंग डायमेंशन। किसी के हृदय में प्रेम ही नहीं है। उस प्रेम का तुम अनुभव कराओ। तो बाबा आज क्या बनकर आया है? स्नेह का सागर। सागर कैसा होता है? विराट, विशाल। सागर का कैसा, सागर का रूप कैसा होता है? कभी खुटता नहीं, अखूट है। सागर की लहरें निरंतर आ रही है, अतल गहराइयों में खजाने छिपे हैं, शांत है। कोई भी आ जाए, पापी पुण्यात्मा, सबको शीतलता की और शांति की लहरों का अनुभव होता है। ऐसे तुम मास्टर सागर बनो, तो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सागर से उसकी तुलना की है। भगवान जब धरती पर आया पहली बार, तो उसने सागर को चुना कि मैं इसके जैसा हूं, विराट, बेहद, असीम, अनलिमिटेड, बहुत गहरा। उसका ना ओर है ना छोर। तो स्नेह के सागर किसको देख रहे हैं? स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तीन विशेषताएं देखी, प्रेम, सहयोग, शक्ति, और तीनों विशेषताओं को संकल्प, बोल और कर्म में दूसरों के सामने कितना प्रत्यक्ष किया है वो देख रहे हैं। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, तुम विश्व कल्याणकारी हो या सेंटर कल्याणकारी? जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, तुम स्टूडेंट्स के या क्लास के सेवाधारी हो या विश्व के? जैसे विश्व का मालिक कहा जाता है, तुम किसी महल के मालिक तो नहीं है? हद में हो या बेहद में हो? हद का सहयोग है या बेहद का सहयोग है? स्वार्थ का सहयोग है या बेहद का सहयोग है? तो सबसे पहली बात जो विशेषता बाबा ने सुनाई वो है स्नेह। सच्चे सेवाधारियों के लक्षण क्या होते हैं? सच्ची सेवा क्या है? क्या कोर्स कराना सच्ची सेवा है, या सेंटर पर आना बस यहीं तक सब कुछ हो गया, ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए, प्यार में चल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे? सच्चे सेवाधारी की सबसे पहली निशानी वो क्या है? मास्टर, स्नेह का सागर। स्नेह का मास्टर सागर है वो। तीन उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला बाबा स्वयं, भगवान ने अपना ही उदाहरण दिया। जैसे मैं सागर हूं, मेरे सामने कोई भी आ जाए, ज्ञानी अज्ञानी, सबको किस बात की अनुभूति होती है? प्रेम की, सागर की, लहरों की। वैसे तुम्हारे सामने भी कोई आ जाए, वही अनुभव हो उसको, प्रेम के, सागर की लहरें। जैसी जैसे वो सागर है, प्रकृति का सागर, वो लौकिक सागर, वो स्थूल सागर, उसके सामने भी कोई भी आ जाए तो उसे किस बात की अनुभूति होती है? शीतलता की और शांति की अनुभूति होती है। वैसा ही तुम शांति का वायुमंडल, वैसे ही तुम प्रेम का वायुमंडल, रूहानी खुशबू प्रेम की तुम फैलाओ। कोई भी आ जाए, खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए, दाता हो। क्या इतना प्रेम हमने अपने हृदय में भरा है? कितनी ऊंची ऊंची बातें, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, हरेक के लिए ऐसा अथाह प्रेम। तीसरा उदाहरण, संसार में प्रेम की कमी है, भूखे हैं प्रेम के, क्योंकि स्वार्थ है, प्रेम तो है ही नहीं। या तो स्वार्थ है या तो वासना है, मोह है, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम तो है ही नहीं। तुम अनुभव कराओ प्रेम की, कुछ घड़ियों का भी उनको अनुभव हो जाए तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा? जीवन का सहारा हो जाएगा। ऐसे प्रेम का अनुभव कराओ। इतना प्रेम अपने अंदर भरना है। इसलिए अमृत वेले योग में, बीज रूप स्थिति में ये देखना कि वो प्रेम का सागर है और मुझ में समा रहा है, वो प्रेम का सूर्य है, उसकी एक एक प्रेम की किरण बीज अवस्था में मुझ आत्मा में जा रही है। सबसे ज्यादा अभ्यास बीज रूप स्थिति का ही करना है। उसका प्रेम मुझ में आ रहा है, उड़ेल रहा है वो प्रेम मुझ आत्मा में। दिखाया है, तेज बारिश हो रही है, रात के 12 बजे है, एक अत्यंत निर्धन फकीर छोटी सी झोपड़ी है जिसमें केवल दो ही लोग रह सकते हैं, लेटा हुआ है, पत्नी है, और अचानक दरवाजे पर दस्तक। कहता है कि शायद कोई अपरिचित मित्र है। अपरिचित मित्र, हमारे परिचित भी मित्र नहीं। पत्नी कहती है कि हाँ लगता है कोई है, परंतु यहां तो केवल हम दोनों के लिए ही जगह है, हम कैसे उसको आने दें। परंतु बेचारा, बारिश हो रही है, भीगा हुआ होगा। वो फकीर कहता है ये किसी राजा का महल नहीं है जहां जगह कम पड़ जाए, ये गरीब की झोपड़ी है जहां पर बहुत जगह है, इसीलिए उसे आने देते हैं। वो व्यक्ति आता है, धन्यवाद समझता है, धन्यवाद करता है। अब तक तो ये लेटे थे, अब बैठे हुए क्योंकि जगह बहुत कम है और गपशप चालू है। थोड़ी देर के बाद फिर से दस्तक होती है, इस बार दो लोग हैं। ये जो व्यक्ति अभी अभी आया था वो कहता है दरवाजा मत खोलो क्योंकि जगह कम है, हम तीन ही लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये वही व्यक्ति था थोड़ी देर पहले जो आया था। वो फकीर कहता है कि प्रश्न उन व्यक्तियों का है ही नहीं, प्रश्न प्रेम का है, जिस प्रेम ने तुमको जगा दी वही प्रेम उनको भी जगा देगा। अब हम बैठे हैं, लग लग के बैठेंगे। पत्नी कहती है जगह जगह है कहां। वो कहता है प्रेम है, प्रेम सबको जगा देगा, प्रेम का हृदय विराट है। वो दो लोग अंदर आ जाते हैं, अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, लग लग के बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आती है, पर इस बार मनुष्य नहीं है, गधा है बेचारा, भीगा हुआ है। वो जो दो लोग आए थे अभी अभी कहते हैं बिल्कुल अभी तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जगह कहां है। फकीर कहता है जिस प्रेम ने तुमको जगा दी वो प्रेम उसको भी जगा देगी, अगर जरूरत पड़ी तो अब हम खड़े हो जाएंगे, और भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं बाहर चला जाऊंगा क्योंकि प्रेम है, प्रेम का भाव है, और जहां प्रेम है वहां साथियों की सारी कमी कमजोरियां अंदर समाहित हो जाती है। जहां प्रेम है वहां जगह अपने आप बन जाती है, जो भी संपर्क में आए खाली हाथ न जाए, जो भी संपर्क में आए, जो प्रेम तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारा बाप से प्रेम है, बाप जानते हैं तुम्हारा बाप से कितना प्रेम है, परंतु अब वही प्रेम की अनुभूति दूसरों को कराओ ताकि वो कहे ये कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। 5 मार्च को एक स्लोगन था, प्रेम की ऐसी भरपूर गंगा बनो जो तुम्हारे द्वारा दूसरों को बाप दिखाई दे। प्रेम की ऐसी भरपूर गंगा बनो, परंतु ऐसा प्रेम हृदय में आने के लिए वो सारा घृणा, वो सारी नफरत, वो सारी ईर्ष्या अंदर से निकल जाए। कुछ दिन पहले साकार मुरली थी, अगर तुम्हारी किसी से नफरत है, घृणा है या तिरस्कार है तो दंडे खाने पड़ेंगे, पर दंडे खाने के भय से नहीं, प्रेम को लाना है, और किसी भय से प्रेम आ नहीं सकता क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं। हिंदी भाषा में 2 शब्द है, एक है निर्भय, एक है अभय। क्या अंतर है दोनों में? एक है निर्भय, एक है अभय। प्रेम भय के विरोध में खड़ा है निर्भय, निर्भय अर्थात प्रेम का विरोधी है। हम किसी से नहीं डरते, हम लड़ेंगे, परंतु वो भय का शीर्षासन है। एक तीसरी अवस्था है चेतना की, अभय। अभय अर्थात भय से मुक्ति, भय से पूर्ण मुक्ति हो गई है। और जब अभय होगा तभी प्रेम होगा, निर्भय में प्रेम अभी दूर है क्योंकि निर्भय लड़ाई की अवस्था है, भय से लड़ रही है निर्भय की स्थिति। तो सबसे पहली विशेषता स्नेही बच्चों की, स्नेह के सागर, स्नेह के मास्टर सागर, मास्टर स्नेह के सागर। जो भी संपर्क में आ जाए वो कुछ ना कुछ ले जाए, प्रेम ले जाए, प्रेम की अनुभूति हो। हरेक को पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं सुनाना है। पूछे ये प्रेम आया कहां से, किसने भरा है ये प्रेम, और ढूंढते ढूंढते उस प्रेम के सागर तक आत्मा स्वतः ही पहुंच जाएगी, हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम के प्रकंपन ही उस आत्मा को प्रेम के सागर तक पहुंचाएगी। सबसे पहली विशेषता प्रेम। दूसरी विशेषता सहयोग। सहयोग अर्थात अपनी विशेषता को सेवा में लगाना। सहयोग अर्थात देना। सहयोग अर्थात दाता। सहयोग अर्थात भक्ति मार्ग में देना अर्थात लेना। अभी देना अर्थात भक्ति में लेना अर्थ होता है, और अभी देना। क्या देना? ज्ञान। क्या देना? प्रेम। क्या देना? शक्ति, बल, याद का धन। और सहयोग में क्या स्वार्थवश ना हो, पर्सनल स्वार्थवश ना हो, बेहद का सहयोग देना। हर एक आत्मा को सहयोग देना। किन आत्माओं को सहयोग देना? जो मुश्किल परिस्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, कमजोर परिस्थिति में है, ऐसी आत्मा को सहयोग अगर दे दो तो क्या होगा? वो कहेगी ये बाप समान सहयोगी आत्माएं हैं। आत्माओं को सहयोग देना है। स्थूल सहयोग देने वाले तो बहुत है संसार में। धन का सहयोग देंगे, कपड़ों का सहयोग देंगे, मकान का सहयोग देंगे, परंतु किसी की स्थिति ऊपर उठा देना, किसी का लड़खड़ाता हुआ ब्रह्मचर्य फिर से स्थिर हो जाए। उदासी के गर्त में डूब रही थी आत्मा और उसे सहारा, संबल मिल जाए, शक्ति मिल जाए। बाबा ने कहा उमंग उत्साह की लहरें फैलाओ सहयोग की। किसी की अवस्था को ऊंचा उठा देना, यह सबसे बड़ा सहयोग है। आत्माएं भटक रही है, दुखी है, अशांत है, भयभीत है, और ऐसे माहौल में उन्हें स्थूल से अधिक सूक्ष्म सहयोग की आवश्यकता है। इसीलिए अमृत वेला, नुमा शाम, रात को सोने से पहले आत्माओं को शक्तियां देनी है, सकाश देनी है। पांच तत्वों को सकाश देनी है, अपनी देह को सकाश देनी है, पांच सत्ताओं को सकाश देनी है, पांच प्रकार की आत्माओं को सकाश देनी है, ब्राह्मण परिवार को सकाश देनी है, ब्राह्मण के ये जो स्थान है उनको सकाश देनी है, विकारों को भस्म करना है, कितने सारे कार्य करने हैं हर दिन। क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जिसका कोई तोड़ना होगा, वुहान वीरान बन जाएगा। एक अमेरिकन लेखिका सिल्विया ब्राउन, जो बहुत ही कुप्रसिद्ध थी, अभी 2013 में उसने शरीर छोड़ दिया, 7 साल पहले। कुप्रसिद्ध थी क्योंकि उसने इतनी भविष्यवाणियां की कि उसमें से अधिकतर झूठी निकली। इसके लिए उसके विरोधी बहुत है, पर उसने एक ऐसी किताब लिखी थी 2008 में कि उसने एक पैराग्राफ ऐसा लिखा था कि अभी लोग उसके बारे में सोचने लगे हैं। उसने कहा था ऐसी बीमारी आएगी 2020 में जिसका कोई इलाज नहीं होगा, पर लोगों ने इसका भी विरोध किया है कि उसने ये एक पैराग्राफ पर क्यों फोकस कर रहे हो, उसने जो इतनी सारी चीजें लिखी वो तो सब झूठी निकली। और उसने कहा था कि ये बीमारी आएगी और अचानक गुप्त गायब हो जाएगी और फिर 10 साल बाद फिर आएगी और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो भविष्यवाणियां करने वाले बहुत है, परंतु बाबा ने तो पहले ही कह दिया है ये सब कुछ होगा। बाबा, ड्रामा, समय, ये तीन हमारे टीचर हैं। सीखना है, हर समय जैसे हम आईसीयू में हैं, एक एक घंटे की मॉनिटरिंग चालू है, अब स्थिति कैसी है, तब स्थिति कैसी है, पल पल खबरें आ रही है, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। बाबा ने तो पहले ही कहा ये सब कुछ होगा, फिर भय कैसा, फिर चिंता कैसी, ये सब कुछ होगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ गर्त हो जाएगा, आंखों सहित कुछ नहीं बचेगा। सहयोग देना है आत्माओं को, भयभीत है, चिंतित है, दुखी है, अशांत है, पीड़ा में है, ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे ऐसे मानसिक रोग कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सत्ताएं हिल जाएगी, बड़े बड़े साम्राज्य धन के गिर जाएंगे, केवल वही जिन्होंने स्वयं को अनुशासित किया है, केवल वही योगी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं जिन्होंने अपने शरीर को जीता है, जो स्वराज्य अधिकारी है, केवल वही आत्माएं जो संपूर्ण निर्विकारी है, केवल वही आत्माएं जो संपूर्ण ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी है, केवल वही आत्माएं जिनकी लंबे समय से पवित्रता की धारणा चलडोल है, केवल वही आत्माएं जिन्हें लंबे समय से अशरीरीपन का अभ्यास है, केवल वही आत्माएं जो देह से संपूर्ण डिटैच्ड है, अशरीरी है, साक्षी है, उपराम है संसार से, यहां की कोई बातें उन्हें आकर्षित नहीं करती, दही कृष्टों से नष्ट मोह है, नाता तोड़ दिया, विच्छिन्न कर दिए सारे संबंध, मन के सारे धागे सारे तार टूट गए हैं, केवल ऐसी आत्माएं संसार के लिए आधारमूर्त होगी, जो जरा भी जिसमें लगाव है, चाह है, इच्छा है, तृष्णाएं है, वासनाएं है, मोह है, जरा भी विकार का अंश है, वो गिर जाएगी, क्योंकि लास्ट में वही पेपर आएगा जिस तो हमारी कमजोरी है। इसलिए ये समझना, हर समय मैं कहां हूं, आईसीयू में, मॉनिटरिंग हो रही है एक एक घंटे की, एक रस पल्स, एक रस ब्लड प्रेशर, ना ऊपर ना नीचे, स्थिति स्थिर हो, एक रस हो। संसार के साधन देखते हुए भी अंदर धड़कता वैराग्य, सारी सेवाएं करते हुए भी अंदर एक अद्भुत सी डिटैचमेंट हो, कुछ भी नहीं चाहिए, यहां का वितराग, संसार के सभी कार्यकलाप करते हुए, संसार के सभी लोगों के साथ हंसते खेलते हुए एक सेकंड में डिटैच्ड, किसी से कोई मतलब नहीं, सब कुछ करते हुए, सब जगह इन्वॉल्वमेंट होते हुए अंदर एक वैराग्य की अवस्था, ये मेरा घर नहीं, यहां से मुझे जाना है, सहयोग देना है। बाप के कितने सहयोगी बने, अब दूसरों के सहयोगी बनना है, डबल सहयोग। तो दूसरी विशेषता है नहीं आत्माओं की, वो सहयोग देंगे आत्माओं को, जिनकी स्थिति गिर गई है उनकी स्थिति उठाएंगे, जिनका ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है उसे स्थिर करेंगे, जो निराशा की गर्त में डूबे हैं उन्हें फिर उमंग उत्साह में लाएंगे, जो पुरुषार्थ से बेमुख हो गए, थक थक गए हैं, उनको फिर से पुरुषार्थ में लाएंगे। केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, क्योंकि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। अपनी सेवा कर ली, काम पूरा हुआ, बस हमारा काम इतना कम नहीं है। जैसे बाप विश्व कल्याणी है, बाप विश्व सेवाधारी है, बाप विश्व सहयोगी है, हम भी विश्व सेवाधारी है। बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन किस लिए, तन मन धन सब सेवा के लिए है। ट्रस्टी होकर, लास्ट संडे भी था, इस तन को संभालो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, लोन पर दिया है बाबा ने, मेरा जीवन इस शरीर के भोग विलास के लिए बिल्कुल नहीं है। इस शरीर को तपाने के लिए, एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक इंद्रियों में शक्ति भरने के लिए, तपस्वी के लिए, तपस्या के लिए, एक एक इंद्रियों को संयम से भरना है, डिटॉक्स करना है, जो उसमें टॉक्सिन्स है विकारों के, वो निकालने हैं। योगी अर्थात जिसने देह को जीता है, इंद्रियों को जीता है, मन को जीता है, बॉडी टेम्परेचर को जीता है, योगी अपने शरीर का टेम्परेचर अपनी इच्छा से कंट्रोल करता है। बाहर क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है, माइनस हो प्लस हो कोई लेना देना नहीं, वो खुद डिसाइड करता है शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, वो योगी की निशानी। बाहर का कोई भी आधार उसका आधार नहीं है। ज्ञान का कोई संबंध किसी भी बाहर की वस्तु से नहीं है, ज्ञान आंतरिक अनुभूति है, ज्ञान आंतरिक परिवर्तन है। योग का संबंध किसी गीत से नहीं, किसी संगीत से नहीं, किसी ट्रांसलेट से नहीं, किसी सॉफ्ट म्यूजिक से नहीं, किसी स्थान से नहीं, योग का कोई संबंध संसार की किसी वस्तु से नहीं है। योग अंतस की गहराई में उठने वाला प्रभु प्रेम है। सेवा का संबंध भी संसार के किसी साधन से नहीं है। सेवा का लक्ष्य है आत्मा प्रभु तक पहुंचाए, उसको जान ले बस। और हर आत्मा को भगवान तक पहुंचना ही है। एक हंसी की कहानी है, एक दुकान में एक व्यक्ति चप्पल खरीदने आता है, चप्पल खरीदता है, और जो सेल्समैन होता है उससे कहता है मेरे पास ये कितने की है, वो कहता है 40 रुपए की। वो ग्राहक कहता है मेरे पास 10 रुपए कम है, तो वो सेल्समैन कहता है एक बार मालिक से बात कर लो, तब तक मैं पैक करके लाता हूं। वो पैक करके लाता है और मालिक से कहता है कि 10 रुपए कम है, बाद में दे दूंगा। मालिक ना ही कहने वाला है तो ये नौकर कहो या सेल्समैन आता है, कहता है दे दीजिए, लाके दे देगा ये। मालिक को लगता है शायद ये इसको जानता है, दे देता है। फिर पूछता है अपने कर्मचारी से क्या तुम उसे जानते हो, वो कहता है ना। क्या वो कहां रहता है, वो कहता है पता नहीं, इस शहर का है वो भी नहीं पता, तो तुमने दे कैसे दिया। वो कहता है आप चिंता मत करो, वो लेकर आएगा जरूर, क्योंकि क्योंकि मैंने दोनों जूते एक ही पैर वाले दे दिए, उसे आना ही होगा। उसी तरह भगवान ने जब हमें धरती पर भेजा तो एक ही पैर के दो जूते डाल के भेजे, ताकि हर आत्मा को उस तक पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आत्मा उसके बिना अपूर्ण है, क्योंकि आधा भेज दिया है। चाहे जो करना है करो, कितना भोग विलास में जाना है डूबो, पर आना तुमको पैसे देने मेरे ही पास पड़ेगा, क्योंकि एक ही पैर के दो चप्पल के साथ भेज दिया है, एक जूता उसने अपने पास रखा है। और आत्मा की प्यास तब तक नहीं बूझती जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। जो करना है कर लो, इतने देहधारियों से प्यार करना है कर लो, आत्मा पूर्ण ही रहेगी। आत्मा की पूर्तता प्रभु में है। दूसरा सहयोग, तीसरा शक्ति। तुम क्या बन जाओ? लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। लाइट हाउस माइट हाउस बन के आत्माओं को शक्ति दो। आठ शक्तियां है, एक एक शक्ति का अनुभव दूसरों को कराओ। सहनशीलता केवल अपने लिए सीमित ना हो, हमें देखकर दूसरी आत्माओं को लगे कि इन जैसी सहनशीलता हम में आनी चाहिए। कितना अपमान हुआ परंतु इसने कुछ नहीं कहा। कहां से लाई ये सहनशीलता? पूछे, शक्ति का अनुभव कराओ। संसार की आत्माओं को जबरदस्त महावाक्य है बाबा के, निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी दो। निर्बलता के अंधकार से क्या दो उनको? शक्ति की रोशनी दो, उन्हें बल दो, साहस दो, हिम्मत दो, हिम्मत की टांग दो, उमंग उत्साह के पंख दो। उड़ी नहीं पाती, परवश है आत्मा, पता ही नहीं उसे क्या कर रही है। यहां तक कि ज्ञानी आत्माएं भी जब परवश हो जाती है तब वो महारथी नहीं है। ज्ञानी आत्माएं भी, ब्राह्मण आत्माएं भी जब परवश हो जाती है, अधीन हो जाती है, तब शरीर ही शक्तिशाली है, मन कमजोर। विक्ट्री ऑफ मैटर ओवर स्पिरिट हो जाता है। होना उल्टा चाहिए, पर मैटर जीत जाता है, पुरुष आ जाता है, प्रकृति जीत जाती है। जब आत्मा परवश होती है तब कुछ समझ नहीं आता है, ये हो क्या रहा है। ग्रहचारी बैठ जाती है, कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। सुबह सुबह माया एक काम करती है, सुबह सुबह बाबा एक काम करता है, आकर मुरली सुनाता है। सुबह सुबह माया भी एक काम करती है, उल्टी मुरली सुनाती है और बेहोश कर देती है, परवश कर देती है, अधीन कर देती है, कमजोर कर देती है। इसलिए हम आत्माएं कौन है? लाइट हाउस माइट हाउस। लाइट हाउस का प्रकाश केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। हम माइट हाउस है, शक्ति का घर है, शक्ति का पहाड़ है। हमें दूसरों को शक्ति देनी है। कौन सी शक्ति देनी है? शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आत्मिक बल देना है। जितनी हमारी आंतरिक स्थिति श्रेष्ठ होगी उतना ही हम दूसरों को शक्तिशाली बना सकते हैं। जितनी अंदर से एक रस स्थिति है उतना ही दूसरों को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये तीन बातें थी आज की मुरली में। सबसे पहला प्रेम, दूसरा सहयोग, सहयोग और सहजयोगी दोनों शब्द बोल दिए एक जगह, तीसरा शक्ति, और चौथी एक बात मुरली में थी कि अपने में नहीं फंसाना है किसी को। कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है? बाप के साथ। विदेश में कहानी है द होली शैडो। एक व्यक्ति है, इतना उसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, इतना निर्विकार चेतना है कि सब उससे बहुत प्यार करता है, करते हैं, और वो भी बहुत सबसे प्यार करता है, सबकी मदद करता है। और एक बार आसमान से फरिश्ते आ जाते, कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हें कुछ तो देंगे, तुमको लेना ही पड़ेगा। वो फरिश्ते कहते हैं क्या हम तुम्हें ऐसी शक्ति दे दे कि तुम्हारे हाथ में ऐसी उपचारक शक्ति आ जाए कि किसी भी मरीज को हाथ लगा दो तो वो ठीक हो जाए। वो कहता है नहीं, ये काम तो फरिश्तों का है, मेरा नहीं। फिर वो फरिश्ते कहते क्या तुम हम तुमको ऐसी शक्ति दे दे कि कोई जीवन से हार गया है, अपराध भाव में है, और तुम्हारे संपर्क में आते ही जीवन परिवर्तन हो जाए। वो कहता है नहीं, इससे तो वो मुझे ही अपना गुरु मान लेगा, ये कार्य तो ईश्वर पुत्रों का है। वो फरिश्ते कहते हैं क्या हम तुम्हें ऐसी शक्ति दे दे कि तुम जहां से जाओ वहां पर जो खेत है वहां हरियाली आ जाए, जो झरने हैं जो सूखे हुए तुम जाओ और झरनों में पानी आ जाए, वो कहता है नहीं ये काम तो प्रभु का है मेरा नहीं है। तो क्या दे हम तुमको, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरिश्ते वापस जाते हैं, भगवान उनके कान में कुछ कहते हैं और वो वापस आते कहते हैं हां हम तुमको एक चीज देते हैं, एक ऐसा वरदान देंगे। परंतु वो कहता है वरदान देने से पहले एक बात, एक मेरी शर्त है, जो भी वरदान दोगे वो किसी को पता ना चले कि इस वरदान के जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो फरिश्ते कहते ठीक है, आज के बाद तुम जहां से चलोगे तुम्हारी परछाई जहां गिरेगी वहां पर चमत्कार होते जाएंगे, पर किसी को ये नहीं पता चलेगा कि वो तुम्हारी परछाई है। तुम सड़क पे जाओगे वहां पर खेत है वो उसमें हरियाली आ जाएगी। कोई बीमार है तुम्हारी परछाई उस पर पड़ेगी वो ठीक हो जाएगा। पर वो कहता है हां पर किसी को पता ना चलना पाए कि वो मेरी वजह से हो रहा है। और लोगों ने धीरे धीरे इस व्यक्ति को तो भूल ही गए, उसके नाम को भी भूल गए और बस एक ही याद रहा, द होली शैडो, भगवान की छाया। हम क्या है, उस परमात्मा की छाया। कोई मुझ में ना फंसे, बाबा ने कहा अपने में फंसाया तो गिराया, अपने में फंसाया ये सेवा नहीं है, अपने में फंसाया ये पुण्य नहीं पाप है। कोई हमारा ही भगत बन गया, भगवान से विमुख कर दिया, बाबा को हंसी आती है, लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है, तुमको मैं लेके कहां जाना चाहता हूं, तुम जहां कह रहे हो गलियों में भटक रहे हो। बहुत ही सूक्ष्म बात कह दी है ये, किसी को तुमने अगर भटकाया तो इसको पाप नहीं, इसको पुण्य नहीं पाप कहा जाएगा। उसका संदेश ऐसा देना है कि परंतु फिर भी ये संसार भगतों का संसार है, भगत तो पीछा करेंगे जरूर, पर हम निमित्त ना बने उनकी भक्ति बढ़ाने के, क्योंकि यहां पर हर एक को कोई तो साकार चाहिए जिसकी बैठ के पूजा करे। किसी व्यक्ति को सत्य मिल गया, सदियों में किसी को सत्य मिलता है, हजार खोजते हैं पर सत्य नहीं मिल पाता, एक व्यक्ति को सत्य मिल गया और शैतान के जितने सेवाधारी थे वो भाग भाग के शैतान के पास पहुंचे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनके, कि एक व्यक्ति को धरती पर सत्य मिल गया, अब हमारा क्या होगा, हम तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है। वो शैतान कहता है चिंता मत करो, जाओ जाकर सब जगह प्रचार कर दो कि उस व्यक्ति को सत्य मिल गया। वो शैतान के मुरीद सेवाधारी कहते ये क्या कह रहे हो, अगर किसी को सत्य मिल गया धरती पर तो हम तो नष्ट हो जाएंगे, और आप कह रहे हो प्रचार करो, हमें तो प्रचार रोकना चाहिए। शैतान कहता है नहीं तुम मेरी बात नहीं समझे, मेरा हजारों साल का अनुभव है। क्या, कि जब भी संसार में किसी को सत्य मिल जाता है, कोई क्राइस्ट, कोई बुद्ध, कोई महावीर को, क्या करो प्रचार करो, तो अनुयायी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे, शिष्य तैयार हो जाएंगे और वो सत्य को नष्ट कर देंगे। जाओ प्रचार करो, प्रचार करने लगते हैं, अनुयायी तैयार हो जाते हैं, उसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, वो जो सत्य लेकर आया था उसको भूल जाते हैं और उसी को भगवान मान लेते। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, पर बाद में दश अवतार में नौवा अवतार तो उसी को बना दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा किसी की भी शरण में नहीं जाना, लोगों ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, अब हम तुम्हारी शरण में आ रहे। उन्होंने कहा किसी की मूर्ति नहीं बनाना, सबसे ज्यादा मूर्ति है संसार में बुद्ध की है। उसने कहा कोई मंदिर में नहीं जाना, सबसे ज्यादा मंदिर भारत के बाहर अगर देखे तो उन्हीं के, बुद्ध के मंदिर बनाए। अनुयायी बड़े खतरनाक होते हैं। हिंसा नहीं करना कहा, और सबसे ज्यादा हिंसा कहां होती है, बाद में जब तंत्र में मिक्स हुआ बुद्धिज्म, सब कुछ उल्टा हुआ। जीसस क्राइस्ट आया, किसका संदेश दिया उसने, सबसे ज्यादा प्रेम का संदेश दिया। किन लोगों को दिया? उन सारे यहूदी लोगों को प्रेम का संदेश दिया। कोई बीमार था उसको ठीक किया, कोई चल नहीं सकता था उसको चलाया, जो अंधा था उसको आंख की बिनाई दी, क्या कुछ नहीं किया। और उन्हीं लोगों ने मिलकर उसको सूली पर चढ़ा दिया। जिनको उसने प्रेम का संदेश दिया उन लोगों में इतनी क्रूरता इतनी बर्बरता थी कि उसको सूली पर चढ़ा दिया सीधा। ऐसा ही होता है यार, सबसे ज्यादा विरोधी उसके होते हैं जो सत्य बोलता है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके अनुयायी भी। पर ज्यादा खतरा उनसे नहीं है जो विरोधी है, ज्यादा खतरा किनसे है? जो शिष्य होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, क्योंकि वो उसको भगवान बना देते हैं। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा किसी को अपने में नहीं फंसाना, ये गलियों में भटकाना है ये पुण्य नहीं ये पाप है, बाप से बेमुख कर दिया है, ये सेवा है ही नहीं। कनेक्शन किस से जोड़ा है? जैसे वो द्वापर से धर्मगुरु आते हैं या तो डिवाइन फादर आते हैं, क्या करते हैं? ऊपर से नीचे लाते हैं, नीचे से ऊपर नहीं ले जाते। वो काम तुमको नहीं करना है। ये बहुत सूक्ष्म बात जो पापा ने यहां कही। कोई भी हम में आसक्त ना हो, यदि कोई हो रहा है तो क्या करना चाहिए? किनारा कर दो। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे, कोई मतलब नहीं किसी से। तो तीन विशेषताएं, तीन कार्य में लगाओ, और लास्ट में ये महत्वपूर्ण बात, कुमारियों से मुलाकात लश्कर है। ढीले होंगे तो खुद शिकार हो जाओगी। कितना अच्छा वाक्य है, ढीले होंगे तो खुद शिकार हो जाओगी। माया को जीतना है, समय की रफ्तार हमारी रफ्तार से तेज ना हो। मौजों का युग है, ज्ञान की मौज, योग की मौज, प्रेम की मौज, मौजों का युग है। मौजे ही मौजे है, मौज का अनुभव करना है। संसार में कोई मौज नहीं है, उस विवाहित जीवन में कोई मौज नहीं है, वो तो नरक है, नरक, जीता जागता नरक। कुमारी अर्थात निर्बंधन, उसे कोई बंधन नहीं, जितनी सेवा करनी चाहिए कर सकती है। कुमारी अर्थात बाप की हूं, बाप के लिए हूं। कितना अच्छा वाक्य है, रोज अमृत वेले उठते ही बाबा के सामने ये वाक्य कहना है, तुम्हारा हूं तुम्हारे लिए हूं, केवल तुम्हारे लिए हूं, किसी देहधारी के लिए नहीं हूं, तुम्हारा हूं तुम्हारे लिए हूं। बाप दादा की नजर है कुमारियों पर, कुमारी अपने आप को जो बनाना चाहती है वो बना सकती है। कुमारी अर्थात पूज, कुमारी अर्थात पूज, चेकिंग करो अपनी, क्या चेकिंग करो कि हर कर्म पूज्य प्रमाण हो रहा है, नहीं हो रहा है तो परिवर्तन करो। कुमारी अर्थात जो 100 ब्राह्मणों की सेवा करे अथक, कुमारी अर्थात निमित्त, और निमित्त जब होगा तो दो बातें होगी, खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। एक एक लाइन जो कुमारियों से मुलाकात की है उसकी घंटों तक चिंतन करने जैसी है, एक एक लाइन पर घंटों घंटों चिंतन एकांत में बैठकर किया जा सकता है। पूज, पूज्य नहीं तो परिवर्तन करो, चेकिंग करो, हर कर्म पूज्य जैसा हो। कुमारी अर्थात भाग्य, भाग्य अर्थात मेरे जैसा कोई नहीं, कोटों में कोई। कुमारी अर्थात मौज में है, जो क्या वास्तव में मौज में है या दुख चल रहा है अंदर, या लगता है हम निर्बंधन है इसलिए मौज में है। ऐसे कैसे, ऐसे मौजों में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, पूज्य आत्माओं को ऐसे, स्नेही आत्माओं को ऐसे, मास्टर स्नेह के सागर आत्माओं को ऐसे, बेहद के सहयोगी आत्माओं को ऐसे, शक्तिशाली आत्माओं को, लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को, दूसरों को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, स्वयं में फंसाने नौ वाली आत्माओं को, ऐसे सबका कनेक्शन एक बाप से जोड़ने वाली आत्माओं को, सबके सबका कनेक्शन एक सत्य से जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा, सेंटर कल्याणकारी नहीं, एक महल के निवासी नहीं, ऐसे विश्व के सहयोगी आत्माओं को, ऐसे बाप की हूं, बाप के लिए हूं, इस भाव को कूट कूट के अंदर भर देना है कि मैं बाप की हूं और बाप के लिए हूं, किसी देहधारी की नहीं हूं, किसी देहधारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं उसके लिए हूं ही नहीं, बाप की हूं, बाप के लिए हूं। आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू द वर्ल्ड, यू बिलोंग टू मी। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है तुम इस संसार के लिए हो ही नहीं, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें इस संसार से चुना है, उठाया है तुम्हें संसार से, तुम इस संसार के लिए हो ही नहीं, तुम मेरे कार्य के लिए हो। संसार की भोग वासना है, विलासिता का जीवन तुम्हारा नहीं, तापसी जीवन है, ऐसे तपस्या करने वाली आत्माओं को, ऐसे दैहिक रिश्ते से नष्टो मोह आत्माओं को, ऐसे समय से रफ्तार तुम्हारी फास्ट ऐसी आत्माओं को, ऐसे निमित्त आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को, ऐसे दाता आत्माओं को, सागर की संतान मास्टर दाता हो तुम, ऐसे प्रभु प्रसाद प्रभु देन समझने वाली आत्माओं को, ऐसे शिकार न होने वाली आत्माओं को, ऐसे मायाजित आत्माओं को, ऐसे प्रेम से भरपूर गंगाओं को। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है अव्यक्त वाणी, आज प्रेम का सागर प्रेम की गंगाओं में नहाने आया है, आज प्रेम का सागर बाप प्रेम की गंगाओं में नहाने आया है। तो ऐसी प्रेम की भरपूर गंगा आत्माओं को, जिसकी हर दृष्टि से कृति से स्मृति से चेहरे से चलन से बाप की याद आए, ऐसी आत्माओं को, ऐसी स्नेह की खुशबू फैलाने वाली आत्माओं को, स्नेह का वायुमंडल निर्माण करने वाली आत्माओं को, नष्ट मोह आत्माओं को, और ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।